आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, प्रवासी भारतीय सम्मान करेंगे प्रदान। नई दिल्ली में आज से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 की होगी शुरुआत, देश भर के 3000 युवा लेंगे हिस्सा। प्रयागराज महाकुंभ के विशेष प्रसारण के लिए आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल की आज से होगी शुरुआत। और प्रदेश के 8 जिले शीतलहर के चपेट में, आज भी शीतलहर के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेंगी। इस अवसर पर वे लगभग 75 देशों से बड़ी संख्या में आए प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगी। आज इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आखिरी दिन है। राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार किसी अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति या NRI या PIO द्वारा स्थापित किसी संगठन या संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान पेश करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना है। ये युवा नेताओं को देश के भविष्य को आकार देने में अपने विचारों का योगदान देते हुए नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय और वैश्विक हस्तियों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। इसके लिए देश भर के युवा नेताओं ने विकसित भारत के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिसमें लगभग 30 लाख युवाओं की भागीदारी है। इस डायलॉग में भाग लेने के लिए 3000 गतिशील और प्रेरित युवाओं का चयन किया गया है। प्रतिभागी 10 पहचाने गए विषयों पर केन्द्रित विषयगत प्रस्तुतियों और प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों को 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 के पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 क्षेत्रों में फैले लगभग 150 केंद्रीय विद्यालय प्रतियोगिता का हिस्सा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। ये उद्योग का नया क्षेत्र है और इसका बड़ा बाजार है। इस उद्योग में रोजगार की भी बेहतर और बड़े अवसर हैं। मुख्यमंत्री कल इंदौर में प्रारंभ हुए प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टपैक 2025 को संबोधित कर रहे थे। ये सम्मेलन 12 जनवरी तक उद्योग मेले के रूप में चलेगा। इसमें प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी 400 से अधिक कंपनियां और 2000 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश प्लास्टिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए नीतियों में जो बदलाव करना पड़ेगा वो सरकार करेगी।
मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हाँ, आपने अपने बलबूते पर जो जो प्रस्ताव लेकर आएंगे, हमारे अधिकारी यहाँ है और अधिकारी के बलबूते पर हम CCIP के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले सभी मित्रों के लिए आपकी हमारी सरकार की पॉलिसी भी है, और भी कोई बदलाव करना हो तो हम हर बदलाव करने को तैयार है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को समय पर उपार्जित धान की राशि प्रदान करने को कहा है। मुख्यमंत्री कल समत भवन में एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ धान उपार्जन के संबंध में चर्चा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 5.5 लाख किसानों से अधिक किसानों से 36 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी जिलों में उपार्जन केन्द्रों पर सम्पन्न हो चुकी है। प्रदेश में लगभग 44 लाख मेट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है। धान का उपार्जन 23 जनवरी तक किया जा रहा है। किसानों के खातों में 5000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस आयोजन से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की योगदान का अनुमान है। कल प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के बाद श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ आस्था और आधुनिकता का संगम होगा।
प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सबको उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहाँ प्राप्त हुआ था। और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी संगम नोश पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है।
महाकुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी का आज प्रयागराज में शुभारंभ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चैनल का शुभारंभ करेंगे। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ करेंगे। कुंभवाणी पर आज से 26 फरवरी तक महाकुंभ की हर गतिविधि पर आधारित कई कार्यक्रम सुबह 5:55 से रात 10:05 तक प्रसारित किए जाएंगे। कुंभवाणी चैनल पर अमृत स्नान का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। कार्यक्रम को 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के रविन्द्र भवन में विभिन्न विभागों के लिए चयनित 362 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम में किसान कल्याण और कृषि विस्तार विभाग के 256 कृषि विस्तार अधिकारी, पशुपालन और डेयरी विभाग के 70 सहायक पशु चिकित्सकों और राजस्व विभाग के 36 नौ चयनित नायब तहसीलदारों, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय में आज वानिकी सम्मेलन और IFS मीट का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार करेंगे। प्रदेश भर में सर्दी का दौर जारी है। भोपाल के 8 जिले शीतलहर से प्रभावित हैं। भोपाल, शाजापुर, शहडोल, जबलपुर, मंडला, सिवनी, सीहोर, नीमच जिलों में शीतलहर का प्रभाव आज भी बना हुआ है। पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शहडोल, शाजापुर, मंडला, उमरिया, अनूपपुर में ये 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भोपाल, रायसेन, सीहोर सहित 9 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्कूल शिक्षा विभाग के सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूंज 2024-25 का आज शुभारंभ करेंगे। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बेंगलुरु में कल से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इसमें कलाकार संगीत, चित्रकला, हथकरघा के साथ अन्य सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। खंडवा में 100 दिवसीय निक्षय अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण सिंह ने निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों को फूड बास्केट प्रदान की। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आगर मालवा स्थित पुलिस थाना मैदान में 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित होगा। शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय झाबुआ द्वारा कॉलेज चलो अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर महाविद्यालय में टीम का गठन किया गया है। ये टीम कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रही छात्राओं को वर्ष 2025-26 में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित कर रही है। मंदसौर में जन कल्याण अभियान के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक सुशासन भवन सभागार में कल आयोजित की गई। राज्यसभा की सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी आज कटनी जिले के दौरे पर रहेगी। डिंडौरी के लिए 3 स्थानीय अवकाश के लिए संशोधित आदेश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 4 फरवरी को नर्मदा जयंती और 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी के दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।